लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि श्रम के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति परिपूर्णता हासिल करे, परिवारों का भरण पोषण प्रतिष्ठापूर्ण ढंग से हो सके तथा समाज को मानवीय बनाया जा सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। यदि शासक झूठी बातों पर ध्यान देता तो उसके सभी पदाधिकारी दुष्ट बन जाते हैं। दरिद्र और कपटी में यही समानता है कि प्रभु ने दोनों को आंखों की ज्योति प्रदान की है। यदि राजा दरिद्रों को न्याय दिलाता तो उसका सिंहासन सदैव सुदृढ़ रहता है। श्रोताओ, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 29वें अध्याय के 12वें, 13वें और 14वें पदों में निहित शब्द। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के विगत प्रसारण में हमने इन्हीं पदों की व्याख्या की थी। इन पदों में ध्यान देने योग्य तथ्य यह कि किसी भी व्यक्ति विशेषकर शासकों में झूठ सुनना बहुत बड़ा पाप होता है, क्योंकि ऐसा करके वे न केवल स्वयं व्यक्तियों और चीजों के बारे में गलत निर्णय लेते हैं बल्कि वे दूसरों को भी गलत जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। झूठ वे ही बोलते हैं जो झूठे की बातें सुनते हैं। जो शासक ऐसा करते हैं उनके सेवक भी उन्हीं की तरह दुष्ट होंगे। लेखक ने उन शासकों और पदाधिकारियों को चेतावनी दी है जो सरलता से झूठ सुनने को तैयार हो जाते हैं। वे उन लोगों की शिकायतें सुनने को उत्सुक रहते हैं जो अन्यों की बदनामी करते हैं। अन्यों के बारे में बुरा सुनना उन्हें अच्छा लगता है, फिर भले ही मिली सूचना गलत ही क्यों न हो। वे खुद झूठ और बुराई को सुनने में मजा लेते हैं और इसीलिए अपने सेवकों को भी इस अपराध में शामिल कर लेते हैं। इसीलिए सूक्ति ग्रंथ का लेखक कहता है, यदि शासक झूठी बातों पर ध्यान देता तो उसके सभी पदाधिकारी दुष्ट बन जाते हैं। तदुपरांत लेखक इस बात को रेखांकित करता है कि व्यक्ति चाहे भला हो या दुष्ट, दोनों का सृजन ईश्वर ने किया है। कहता है कि दरिद्र और कपटी में यही समानता है कि प्रभु ने दोनों को आंखों की ज्योति प्रदान की है। प्रभु ने सब मनुष्यों को एक समान बनाया, उन्हें अपने प्रतिरूप में बनाया। इसलिए जिस प्रकार भले लोग आंखों से देख सकते हैं उसी प्रकार बुरे भी देखने में सक्षम होते हैं। श्रोताओ, प्रभु ईश्वर ने अलग अलग स्वभाव क्षमता और परिस्थितियों वाले लोगों की सृष्टि कर अपने विधान की योजना को पूरा किया, यहाँ तक कि उन लोगों द्वारा भी जो एक दूसरे के विपरीत हैं। कुछ गरीब हैं और उधार लेने के लिए मजबूर हैं, अन्य अमीर हैं, उनके पास अधर्म का बहुत सारा धन है। इसी प्रकार कुछ लोग ऋणदाता और सूदखोर हैं तो अन्य हाशिए पर जीने को मजबूर हैं। कुछ गरीब ईमानदार और मेहनती हैं, अन्य अमीर आलसी और धोखेबाज हैं। फिर भी ईश्वर ने चाहे व्यक्ति गरीब हो या अमीर दोनों की आंखों को रोशन किया है। वह अपने सूर्य को दोनों पर चमकाते और उन्हें इस जीवन के सुख प्रदान करते हैं। फिर लेखक राजा शासक और न्यायाधीश यानी कि सभी जिम्मेदार व्यक्तियों को उनके दायित्वों का स्मरण दिलाता है। वे मनुष्य मनुष्य के बीच कोई अंतर न करें बल्कि ईमानदारी से न्याय करें। वे सभी मामलों को सच्चाई और निष्पक्षता के अनुसार तय करें, खासकर उन गरीबों की तरफदारी करें जिनका पक्ष रखने वाला कोई नहीं। अमीर का पक्ष लेकर गरीब के साथ अन्याय कदापि न करें। गरीब इंसान सिर्फ इसलिए दोषी नहीं ठहराया जाए कि वह गरीब है, और अमीर इसलिए न्याय मुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके पास ढेर सारा धन है, और रिश्वत देकर या भ्रष्टाचार द्वारा किसी को भी वह खरीद सकता है। शासक और न्यायाधीश यदि अपना कर्तव्य निभाएंगे तो उनके पद का सम्मान होगा, उनका न्याय अचल होगा और सदा के लिए स्थापित रहेगा। उन्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी जिससे उन्हें अपने परिवार को बनाए रखने में मदद मिलेगी तथा सत्य एवं न्याय भावी पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सकेगा। अब आइए 29वें अध्याय के 15 से लेकर 17 तक के पदों पर दृष्टिपात करें। लेखक कहता है, छड़ी और डांट डपट से प्रज्ञा प्राप्त होती है, किंतु अनुशासनहीन नवयुवक अपनी माता का कलंक है। जब दुष्ट शासन करते तो अपराध बढ़ते हैं, किंतु धर्मी उनका पतन देखेंगे। अपने पुत्र को अनुशासन में रखोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी और वह तुम्हें आनंदित करेगा। श्रोताओ, बच्चों को परिवार में ही अच्छी बातों की शिक्षा मिलती है। क्या अच्छा है, क्या गलत, इसका विवेक उनमें परिवार में ही आता है। माता पिता यदि डांट लगाएं तो बुरा न माना जाए, बल्कि सीधे रास्ते पर आने का इसे जरिया समझा जाए, क्योंकि उनकी सख्ती ही एक दिन बच्चों, किशोरों और युवाओं में बुद्धि और विवेक को पनपने देगी, उन्हें अनुशासन और संयम की आवश्यकता का ज्ञान देगी। श्रोताओं, इन पदों में भी अन्य सूक्तियों की तरह ही अनुशासन की जरूरत, माता पिता का आदर और अच्छे शासन की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है। पुत्र यदि अनुशासन में रहेगा तो वह माता पिता के शांति और आनंद का कारण बनेगा। वैसे ही यदि शासक और न्यायाधीश भले होंगे तो अपनी प्रजा और लोगों की बात सोचेंगे, सत्य का पक्ष लेंगे और झूठ का बहिष्कार करेंगे। परिणाम स्वरूप संपूर्ण राष्ट्र समृद्धि, खुशहाली और शांति का आनंद ले पाएगा। फिर 18 से लेकर 21 तक के पदों में लेखक कहता है, नबियों के अभाव में जनता आत्म संयम खो बैठती है, किंतु संहिता का पालन करने वाले को सुख शांति मिलेगी। शब्दों द्वारा नौकर का सुधार असंभव है, क्योंकि समझने पर भी वह ध्यान नहीं देगा। जो व्यक्ति सोच विचार किए बिना बोलता, उसकी अपेक्षा मूर्ख के सुधार की आशा कहीं अधिक होती है। जो बचपन से अपने नौकर को सिर चढ़ाता, वह अंत में उसे निकम्मा बना देगा। श्रोताओं, जब तक लोगों को कोई बात अच्छी तरह से समझ में नहीं आती, तब तक वे उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। लेखक कहता है कि नबी, सलाहकार, अध्यापक या अभिभावक जब तक हमारे समक्ष किसी रहस्य का उद्घाटन नहीं करें, तब तक हम कैसे उस बात को समझ सकते हैं, और जब बात को समझ ही नहीं पाएंगे तो यह स्वाभाविक है कि हम अपना आपा खो बैठेंगे, अपना संयम खो बैठेंगे। श्रोताओं, यहाँ रहस्योद्घाटन से अर्थ है प्रकाशना का, ईश प्रकाशना का, ईश नियमों के प्रकाशना का, ईश वचन की प्रकाशना का। परमेश्वर का वचन अनुपलब्ध या अस्वीकार किया जाता है तो लोग संयम त्याग देते हैं, उनके पास अब अपनी भावनाओं या वर्तमान विचारों से बड़ा कोई मानक ही नहीं होता। इसके विपरीत जो व्यक्ति व्यवस्था का पालन करता है, जो ईश्वर के नियमों का अनुपालन करता है, वह सुख और संतुष्टि प्राप्त करता है। इस अर्थ में बाइबल धर्मग्रंथ हमारे सृष्टिकर्ता ईश्वर द्वारा हमें दिया गया एक मार्गदर्शक है। यह हमें ईश नियमों से अवगत कराता और विवेकपूर्ण एवं प्रज्ञावान जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। तदुपरांत सूक्ति ग्रंथ का लेखक शब्दों से अधिक आचरण के महत्व को प्रकाशित करता है। शब्दों द्वारा नौकर तो क्या, किसी का भी सुधार असंभव है। शब्दों को लोग सुन तो लेते हैं किंतु उस पर अमल नहीं करते। क्योंकि उन्होंने शब्दों से परामर्श देने वाले के कार्यों को नहीं देखा होता है। अस्तु, लेखक कहता है कि केवल शब्दों से लोगों को सीख मत दो, बल्कि अपने कर्मों द्वारा उन्हें दर्शाओ कि क्या भला है और क्या बुरा। तभी आप सुधार की आशा कर सकेंगे, तभी आप बुराई को भलाई में परिवर्तित करने में सक्षम बन सकेंगे।
हम तो जल
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कार्डिनल मंडल ने सभी कैथोलिकों से अनुरोध किया है कि वे कॉन्क्लेव में भाग लेने वाले कार्डिनलों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वे पवित्र आत्मा की प्रेरणा सुन सकें और यह निर्णय ले सकें कि अगला पोप किसे चुना जाए। वैटिकन ने बुधवार को एक बयान जारी किया जिसमें आगामी कॉन्क्लेव की तैयारी कर रहे कार्डिनलों ने विश्वासियों से प्रार्थना का अनुरोध किया है। बयान में कहा गया है, कार्डिनल जो रोम में एकत्रित हैं, कॉन्क्लेव की तैयारी में आम सभाओं में भाग ले रहे हैं, इस प्रजा को आमंत्रित करना चाहते हैं कि वह कलीसिया के इस महत्वपूर्ण क्षण को एक कृपा एवं आध्यात्मिक आत्मपरक ईश्वर की इच्छा को सुनने के रूप में ले। कार्डिनलों ने कहा कि उन्हें सभी विश्वासों की प्रार्थनाओं के समर्थन की आवश्यकता है, जब वे संत पेद्रुस के अगले उत्तराधिकारी का चुनाव करने वाले हैं। उन्होंने कहा, प्रार्थना वह सच्ची शक्ति है जो कलीसिया में मसीह के एक शरीर के सभी सदस्यों की एकता को बढ़ावा देती है। कार्डिनलों ने कहा, आने वाले कार्य की विशालता एवं वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हुए सबसे पहले हमें अपने स्वर्गीय पिता की असीम प्रज्ञा एवं कृपा के विनम्र साधन बनने की आवश्यकता है, पौत्र आत्मा के कार्य के प्रति आज्ञाकारी होना है। उन्होंने कहा कि पौत्र आत्मा ईश प्रजा के जीवन का नायक है जिन्हें हमें सुनना चाहिए और वे कलीसिया से जो कह रहे हैं उससे स्वीकार करना चाहिए। दिवंगत पोप फ्रांसिस की याद में 5वें नोवेंडियालिस क्रिस्त्याग की अध्यक्षता करते हुए कार्डिनल सांद्री ने पोप फ्रांसिस की विनम्र सेवा के साक्ष्य के साथ साथ कलीसिया के भविष्य के लिए उनके द्वारा छोड़े गए स्थायी दृष्टिकोण पर भी चिंतन किया। कार्डिनल लियोनार्दो सांद्री ने 5वें नोवेंडियालिस क्रिस्त्याग के दौरान अपने प्रवचन की शुरुआत ख्रिस्त जी उठे हैं की घोषणा के साथ की। उन्होंने कहा, इस पास्का काल के समय में कलीसिया दो महत्वपूर्ण क्षणों के बीच है, पोप फ्रांसिस के परमाध्यक्ष काल का अंत और एक नए परमाध्यक्ष काल की शुरुआत। उन्होंने बतलाया कि कुछ ही दिनों में कार्डिनल प्रोटोडीकन एक बार फिर संत पेत्रुस महाज्ञ जगर के झरोके से नए पोप के नाम की घोषणा करने बाहर आएंगे। कार्डिनल सांद्री ने कहा कि यह भूमिका ख्रिस्त के पास का अनुभव में अपना अर्थ पाती है, एक साथ याद करना, एक साथ प्रार्थना करना। कार्डिनल सांद्री ने बतलाया कि नोवेंडियालिस क्रिस्त्याग केवल शोक मनाने का समय नहीं है, बल्कि कलीसिया के लिए एक साथ आने, प्रार्थना करने, याद करने और पुनरुत्थान में अपने विश्वास की पुष्टि करने का क्षण है। उन्होंने बतलाया कि कार्डिनल न केवल पोप के सहयोगी के रूप में इकट्ठे होते हैं, बल्कि अपने साथ दुनिया भर के लोगों की प्रार्थनाएं भी लेकर आते हैं। टोंगा से मंगोलिया तक, तेहरान से यरूशलेम तक और उन जगहों से जहां ख्रिस्तों की एक छोटी लेकिन वफादार उपस्थिति है, जैसे मोरक्को और अल्जीरिया। कार्डिनल ने पोप फ्रांसिस का हवाला देते हुए कहा, हमें हर दिन इस सच्चाई को याद रखने और सचेत होकर जीने के लिए कहा जाता है। शासन करने का अर्थ है सेवा करना। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसी भावना के साथ पोप फ्रांसिस ने अपना पद संभाला। अपने कार्यों, अपनी यात्राओं और हाशिए पर पड़े लोगों की निरंतर देखभाल के माध्यम से कार्डिनल ने कहा कि पोप ग्रेगोरी महान द्वारा इस्तेमाल की गई उपाधि ईश्वर के सेवकों के सेवक पोप फ्रांसिस के लिए महत्वपूर्ण थी, जो कलीसिया को याद दिलाते रहे कि उनके दिल में हमेशा सेवा की भावना होनी चाहिए। प्रेरित चरित्र से दिन के पाठ पर चिंतन करते हुए कार्डिनल सांद्री ने कहा कि पेंतेकोस्त पर पेत्रुस का भाषण न केवल इसलिए चुना गया था क्योंकि यह कलीसिया की शुरुआत को चिन्हित करता है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह पूर्णता की बात करता है। यह भी दोहराता है कि जिस तरह पेंतेकोस्त ने प्रेरितों के लिए एक नई शुरुआत को चिन्हित किया, उसी तरह आज कलीसिया एक नए अध्याय की तैयारी कर रही है। इसके बाद उन्होंने नबी योएल के ग्रंथ से उस पद की ओर ध्यान आकृष्ट किया जिससे अक्सर पोप फ्रांसिस उद्धृत करते थे, मैं अपनी आत्मा सभी लोगों पर उंटे लूंगा, आपके बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे, आपके बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे और आपके नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे। कार्डिनल सांद्री ने कहा कि पोप फ्रांसिस इस पंक्ति को अक्सर पीढ़ियों को जोड़ने के महत्व से जोड़ते थे। उन्होंने कहा कि बूढ़े और युवा के बीच इस मेल जोल के बिना कोई भविष्य नहीं है। अपने प्रवचन को समाप्त करते हुए कार्डिनल सांद्री ने कहा कि पोप फ्रांसिस ने कलीसिया के भविष्य के लिए पहले से ही एक दर्शन छोड़ दिया है। 2025 के जयंती के लिए बुल ऑफ इंडिक्शन में उन्होंने एक और बड़ी घटना की ओर देखा। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के 2000 साल पूरा होने की घटना, जिसे 2033 में मनाया जाएगा। कार्डिनल ने कहा यह पौत्र वर्ष ख्रिस्तियों के रास्ते का मार्गदर्शन करेगा ताकि आध्यात्मिक रूप से हम सभी पौत्र भूमि के तीर्थयात्री बन सकें और एक बार फिर घोषणा कर सकें प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दिए हैं। कार्डिनल मंडल जब सभी कैथोलिकों से अगले पोप के चुनाव में आत्मपरक करने के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध कर रहा है। डोमिनिकन फादर सिल्वेन डेटो कलीसिया की प्रार्थना की शक्ति को याद करते हैं, विशेष रूप से उन क्षणों में जब पौत्र आत्मा नए क्षितिज खोलने का प्रयास करता है। मेरे लिए प्रार्थना करना ना भूलें, ये वे शब्द हैं जिनके साथ स्वर्गीय पोप फ्रांसिस हमेशा अपने उपदेशों एवं विभिन्न भाषणों का समापन करते थे। सम्मेलन की शुरुआत से 7 दिन पहले 1 मई की पूर्व संध्या और माता मरियम के महीने की शुरुआत में कार्डिनलों ने एक घोषणा जारी की। कार्डिनल सेदे वकांते या अंतराल अवधि के दौरान परमधम पीठ के प्रशासन की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए प्रार्थना को एक सच्ची ताकत के रूप में वर्णित करते हैं, जो ख्रिस्त के एक शरीर में सभी सदस्यों की एकता को बढ़ावा देने में सक्षम है। रोम और टुलोज में ईश शास्त्र के फ्रांसिसी मूल के प्रोफेसर फादर सिल्वेन टेडोक ओपी ने कार्डिनलों के निमंत्रण और सार्वभौमिक कलीसिया की प्रार्थना की आवश्यकता के बारे में वैटिकन न्यूज से बात की। सभी विश्वासों की सामूहिक प्रार्थना कलीसिया की एकता को कैसे बढ़ावा दे सकती है, जो इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस सवाल का जवाब देते हुए फादर सिल्वेन ने कहा, एकता का स्रोत पौत्रात्मा में है जो कलीसिया को जीवंत करता है। यदि पौत्रात्मा कलीसिया में नहीं होता तो हम एक तरह के एनजीओ होते। पोप फ्रांसिस अक्सर इस बात पर जोर देते थे, एक एनजीओ के लिए सबसे अच्छा यही है कि वह अच्छा काम करता है, सबसे खराब कि वह कुछ नहीं करता, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन पौत्र आत्मा हमें ऊपर की दुनिया, प्रभु की दुनिया, ईश्वर की दुनिया की ओर खींचती है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।